प्यारे युवा साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 25 अगस्त 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुनीता स्वराज, आप पटना बिहार से हैं, और उपासना चौधरी, आप मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो सुनीता और उपासना, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब कुछ सूचनाएं हैं। एक सूचना तो दोस्तों यही है जो मैं लगातार आप लोगों को अक्सर फ्राइडे को देता हूं कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। साथ ही सैटरडे को ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल, 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के पढ़ने को मिलेंगे, और एक प्रश्न भी मिलेगा जो मेंस को ध्यान में रख करके दिया जाता है, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस दिया जाएगा। मित्रों, इसी के साथ ही एक थोड़ी सी सूचना दूसरी और भी है। मुझे कुछ मेल्स मिले हैं, और उस मेल्स में स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर, ये जो आपकी क्लासेस होती हैं 15 दिन की, अगर इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पर हमें मिल जाए तो हमें उससे बहुत फायदा हो सकता है, और प्लीज इसके लिए आप कुछ करें और हमें उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दें। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप सबकी इस तरह की भावना का बहुत सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ जानना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, और उसमें यह आपके मदद कर सकता है, राइट? तो यह एक तरह से मैं यूं कहूंगा कि मेरे लेक्चर्स के प्रति आपके द्वारा व्यक्त किया गया अप्रत्यक्ष रूप से विश्वास का ही भाव है। यहां दोस्तों मैं माफी चाहते हुए कहना चाहूंगा कि वो संभव नहीं होता है, इसलिए कि जो क्लासेस होती हैं, है ना, उन क्लासेस में जहां इतने सारे स्टूडेंट हों और इनफॉर्मल टाइप की भी क्लास होती है, वहां आप रोशनी में, उतनी लाइट में आप उसको रिकॉर्ड कर सकें, वो पॉसिबल नहीं होता है। आप कल्पना करके देखिए कि एक दिन में मैं 6 घंटे क्लास ले रहा हूं, और उन 6 घंटे तक लगातार अगर मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ती रहे, लाइट जो रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी होती है, तो आप मेरा अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति होगी, आंखें चुंधिया जाएंगी, और यहां तक कि जो सामने स्टूडेंट बैठे हुए वो मेरा चेहरा बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे। जबकि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है, जब क्लास में आकर के आप किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, तो हाव भाव एक्शन इन सब का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। तो सारी चीजें गायब हो जाएंगी, न उसकी रिकॉर्डिंग आवाज की दृष्टि से अच्छी हो पाएगी, इसीलिए मित्रों यह संभव नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। दूसरा जो सवाल काफी पूछे जा रहे हैं वो ये है कि हम लोग करेंट कंटेंट में हिंदी में मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किए कि सर उसे इंग्लिश में भी अवेलेबल कराया जाए। मित्रों, आप थोड़ा सा करेंट कंटेंट को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके आखिरी में लिखा हुआ होता है कि यह इंडियन एक्सप्रेस से है, यह हिंदू से है, यह टाइम्स ऑफ इंडिया से है, यह इकोनॉमिक टाइम्स से, आप पढ़िए उसको, ध्यान से पढ़िए। इसका मतलब है कि वह इंग्लिश वर्जन में आपको पहले ही अवेलेबल कराया जा चुका है, वो ऑलरेडी प्रेस क्लिपिंग्स में दिया जा चुका है, और उसका हिंदी वर्जन, नो डाउट कि जो हिंदी वर्जन प्रोवाइड किया जा रहा है वो ज्यों का त्यों ट्रांसलेशन नहीं है, ये मैं मान सकता हूं। तो वह आप तो अंग्रेजी में बहुत विस्तार के साथ पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप किसी तरह की उसमें कमी महसूस न करें कि आपको कोई चीज कम मिल पा रही है, वो ऑलरेडी है। आप ध्यान देंगे तो आपको वही उसी से जुड़े हुए आर्टिकल्स प्रेस क्लिपिंग्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज हम मुख्य विषय के तहत निजता का अधिकार पर बात करेंगे, और निजता का अधिकार पर मैं अब आपको अखबार की चीजें दोहराने नहीं जा रहा हूं। मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने न्यूज में भी सुना है, DD न्यूज में भी इसे बहुत अच्छे से सुना है, और आज के अखबारों में तो बातें हैं ही, तो उसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो उसी जिसे आपने अक्षर के रूप में पढ़ा है अब ध्वनि के रूप में सुन करके आप कुछ बहुत ज्यादा फायदे में नहीं रहेंगे। तो मैं इसको एक अलग एंगल से बात करूंगा कि परीक्षा की दृष्टि से आपको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, और कुछ नई चीजें जोड़ने की कोशिश मेरी होगी ताकि आप इसमें थोड़े से विशिष्ट बन सकें। लेकिन इसी के साथ ही मैं एक दो दूसरे न्यूज की भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, उस धर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स। उसमें एक है भारत एवं नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री हमारे भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उनकी यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है फ्रेंड्स कि जो नेपाल है, नेपाल में लगातार चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, है ना। नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शुरू से काफी सक्रिय रही है और अब तो काफी शक्तिशाली हो गई, और चीन में कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट सरकार है, तो नेपाल और चीन के संबंध की निकटता अभी की स्थिति में भारत के लिए आप यूं कह लीजिए कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। और नेपाल से जहां तक भारत के संबंध है वो तो बहुत ही पुराने समय से हैं, और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आपने सुना भी है कि हिमालय की तरह हमारे जो संबंध हैं वो अडिग हैं, उसको मतलब उन्होंने इशारे से कह दिया कि कोई दूसरा देश उसमें घुसपैठ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अभी नेपाल में कुछ ऐसी स्थितियां हुई थी जब नया संविधान बना, सरकार बनी, तो कुछ ऐसे उथल पुथल मची कि भारत के साथ संबंधों में थोड़ी सी ढिलाई आ गई थी। अब जबकि प्रधानमंत्री भारत में हैं और काफी लंबी यात्रा पर हैं, तो डेफिनेटली इस बीच में जो संधियां होंगी, जो बातचीत होंगे, समझौते होंगे, उनसे दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आएगी। और अगर आपने कल डीडी न्यूज सुना हो तो आपने देखा होगा कि ठीक इससे पहले नेपाल के जो राजदूत थे रंजीत राय जी, वो नेपाल के इशू पर बात कर रहे थे। रंजीत राय जी का नाम मैंने विशेषकर इसलिए लिया कि जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो रंजीत राय जी की भी जो पोस्टिंग थी वो राष्ट्रपति भवन में ही थी, तो हम दोनों ने लंबे समय तक एक साथ काम किया है। तो उन्होंने नेपाल से क्या एक्सपेक्टेशन भारत की है और भारत से नेपाल क्या चाहता है और कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ और निकट के और मजबूती के संबंध बना सकते हैं, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। और स्वाभाविक है कि वो तो वहां राजदूत रहे हैं, तो उनसे अच्छा विशेषज्ञ इस विषय का कौन हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर ध्यान देंगे। एक जो दूसरी जो खबर है इक्वल कंटेंट के रूप में है, वो खबर ये है कि आपको मालूम है कि हरियाणा में अभी आज न्यायालय का एक निर्णय आना है, जो सीबीआई के न्यायालय का जो रहीम जो वहां के धार्मिक गुरु हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसका न्यायालय से निर्णय आना है। और उनके जो भक्त जन हैं या कह लीजिए उनके जो अनुयायी हैं, कैसे उन्होंने पूरा उस एरिया में 10 लाख 15 लाख या 5 7 लाख जो भी है की संख्या में वो पहुंच गए हैं, कि अगर न्यायालय पता नहीं उनका इरादा क्या है, उस पर जो कोर्ट है उसने जो टिप्पणी की है वह कंटेंट है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कोर्ट की ये है कि ये सारे इतने लोग जो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं तो राज्य सरकार ने इन्हें इकट्ठा होने क्यों दिया, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि यहां तक टिप्पणी कर दी कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार उनसे मिली हुई है और फिर यहां तक उससे आगे जाकर के कर दिया कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेंट किया है कि जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उनको हटा दिया जाना चाहिए। और फिर वो ये कह रहे हैं कि नहीं वहां 144 धारा लगाई है और केंद्र सेना और भेजे। अब आप देखिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि जो काम प्रशासन का है उस वह काम न्यायालय को करना पड़ रहा है। अब यहां ये प्रश्न जरूर उठता है कि न्यायालय को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे ही हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, कि न्यायालय को क्या पड़ी है इनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करने की। लेकिन जब न्यायालय को यह लगता है कि ये तो मामले को और ज्यादा बढ़ा देगी, मान लीजिए कि न्यायालय से कोई विपरीत निर्णय आ गया तो ये जो इकट्ठे हुए लोग हैं इतने सारे शांति भंग कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, अंततः राष्ट्रीय जो हमारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ भी ना करें। लेकिन आशंका तो रहती है दिमाग में, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो प्रशासन लेती ही लेती है। तो अब न्यायालय की यह मजबूरी हो जाती है कि अगर वो जीवन लोगों के जीवन की सुरक्षा के बारे में सोचती है, शांति लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचती है, तो उसको ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है। अगर वो इस दर से बिल्कुल उदासीन हो जाए और बिल्कुल उसे वो कहने लगे कि भाई हम तो अब सिर्फ हमको न्याय करना है और हम अपना डिसीजन दे देंगे, तो फिर वो भी लगता है कि न्यायालय ने क्यों नहीं लोगों को इस तरीके से सतर्क किया, प्रशासन को सतर्क किया। तो दोस्तों ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मामला है, बहुत ही डिस्प्यूटेड मामला है, इस पर आप सबको विचार करना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। एक बात मैं और आप लोगों को देखिए बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे संबंधित भी कुछ मेल मेरे पास आए हैं। मेरे ये आए हैं कि जब कोई भी किसी भी इश्यू पर मैं बात करता हूं तो बात करते समय मेरे जो निष्कर्ष होते हैं, मेरे जो ओपिनियंस होते हैं, याद रखिए वो सिविल सर्विस के पॉइंट से आपके क्या होने चाहिए, अगर कहीं ओपिनियन है तो मैं वो ओपिनियन देता हूं, राइट। वो मेरे अपने व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं होते हैं, और जब मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन होंगे तो मैं उसमें बाकायदे कहता भी हूं कि ये मेरी खुद की राय है, राइट। क्योंकि मैं आपको अपने ओपिनियन देकर के अपने ओपिनियन का मुरीद नहीं बनाना चाह रहा हूं, गुलाम नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं तो आपके दिमाग को ओपन करना चाह रहा हूं। इसीलिए आप सब मेरे ओपिनियन को इस तरह के जो सिविल सर्विस के तहत मैं ओपन रूप से कहता हूं, आप मेरा ओपिनियन ना माने और न ही उसे सरकार से जोड़ करके देखे, न विपक्ष पार्टी से देखे, किसी राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको वह लाइन तक देने की कोशिश करता हूं, उस रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें आपको मदद मिल सके। तो प्लीज इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मेल मिले हैं जिनका पूरी तरह से उल्लेख मैं नहीं यहां कर रहा हूं और उसकी जरूरत भी नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो आइए, अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है और हम निजता के अधिकार पर थोड़ी सी बात करते हैं। मैं दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जो निजता का अधिकार है, आपने देखा, आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाना चाहिए कि ये निजता का अधिकार ही अनुच्छेद 21 के तहत सरकार ने इसको मौलिक अधिकार माना है, और 21 अनुच्छेद 21 में ये बात कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और वो बिना निजता के अधिकार के संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि निजता का अधिकार आपकी पकड़ में बहुत अच्छे से होना चाहिए। थोड़ा सा आइए इसको और विस्तार देते हैं कि ये जो निजता का अधिकार है ये बेसिकली स्वतंत्रता का अधिकार का एक हिस्सा है। छह मौलिक अधिकार है, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, उसमें जो सेकेंड मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ये चार अनुच्छेद रखे गए हैं 19-22। और उसमें से जो तीसरा अधिकार है यानी कि अनुच्छेद 21, उसका संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से है। चलिए, अब ये तो सामान्य सी बात हो गई दोस्तों, लेकिन जब आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, है ना। निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, क्यों कहा, इस तरह के प्रश्न अब कम से कम पूछे जाने की संभावना नहीं है, है ना। पूछेंगे वो इससे, लेकिन अलग तरीके से पूछेंगे जिसमें वो आपकी ब्रिलियंसी को जांच सके, आपकी अपनी सोच को समझ सके, राइट। तो अब आपको चाहिए कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 21 है उसको थोड़ा सा निकालें और उस पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना लें कि ये है क्या, किस तरीके से अब संविधान को लागू हुए 1950 के बाद से आज इतने साल हो गए हैं, 67 ईयर्स हो गए हैं, क्या इसको लेकर के कोई बहस हुई, क्या कुछ बदलाव आए, वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, तब आप इस अनुच्छेद के साथ न्याय कर सकेंगे। अदरवाइज तो एक लाइन का अनुच्छेद है, बात खत्म हो गई, राइट। तो जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो आप पाएंगे कि 1979 में इसी उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में इसी अधिकार के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, और दूसरे बहुत अधिकारों की घोषणा की कि यह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत आते हैं, और ऐसे अधिकारों की संख्या आप सोच करके देखिए 26 है, 26 अधिकार हैं जिनको उन्होंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता माना है। उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको मैंने देखा है कि हम अक्सर मिस कर जाते हैं, वो है स्वच्छ पर्यावरण। मतलब स्वच्छ पर्यावरण भी हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको स्वच्छ पर्यावरण मिले। अब स्वच्छ पर्यावरण में फिर बहुत सी चीजें हैं कि प्रदूषण रहित वायु हो, स्वच्छ जल हो, हानिकारक जो उद्योग हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा हो। तो दोस्तों इसमें 26 हैं, और मजेदार बात है कि इस 26 में ही एक निजता का अधिकार भी है, यानी कि उस निजता के अधिकार को ऑलरेडी 1978 में उस मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया जा चुका है। जब आप उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहां आपको जानने को यह मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स, और दूसरे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। आपने दो ईयर देखे 57 या और 62, उस समय भी जब निजता का अधिकार का बात की बात आई थी तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, राइट। और आज डिसीजन दिया जा रहा है कि यह मौलिक अधिकार है और वही सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। और एक संयोग देखिए कि नहीं है कहने वाले हमारे चंद्रचूड़ जी न्यायमूर्ति थे, अब उनके बेटे ही अब अपने ही पिता के आप यूं कह सकते हैं कि जजमेंट को उलट रहे हैं। तो क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या कुछ न्यायिक प्रक्रिया में खामी है? यहां से आपको जो निष्कर्ष निकालना है मित्रों, वो निष्कर्ष ये निकालना है, यही कानून की सबसे बड़ी व्यावहारिकता है। क्योंकि इस बीच में अगर दोनों के बीच में ऑलमोस्ट अगर 50 साल का फासला है, 45 साल का फासला है, तो इस फासले के दौर में समाज बहुत बदल चुका है। न केवल समाज के मूल्य ही बदले हैं बल्कि उसकी जो भौतिक परिस्थितियां, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, उसमें भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि 50 साल पहले जो चीज सही थी वो आज गलत, आज भी सही होगी, या 50 साल पहले जो चीज गलत थी वो आज भी गलत होगी। तो ये बहुत अच्छा एक नमूना है कि किस तरीके से जो कानून है उसको बदलते हुए समाज को प्रतिबिंबित करना चाहिए, उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। और केवल ये कानून में ही नहीं होना चाहिए, ये हमारे संविधान में भी होना चाहिए, यानी कि हमारी संसद में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे धर्म में भी होना चाहिए, हमारे सामाजिक मूल्यों में भी होना चाहिए, और हमारी परंपराओं में भी होना चाहिए। कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे हम उन चीजों में परिवर्तन करें, और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो दोनों में द्वंद होगा, दोनों में टकराव होगा, और ये टकराव फिर अंततः समाज को ही तोड़ेगा। तो यह एक अलग पॉइंट है जिसको लेकर के आपको चलना है। दूसरा जो पॉइंट है मित्रों वो ये है कि राज्य और समाज का भी आपको एक द्वंद दिखाई देगा। राज्य क्या चाहता है? सच पूछे तो राज्य चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमांड में रखे, है ना, कानून और व्यवस्था के नाम पर। और समाज चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र रहे, लेकिन न तो एक लोक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य लोगों को अपने कमांड में रख सकता है, यानी कि तानाशाही में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, और न ही समाज को यह छूट दी जा सकती है कि वह स्वतंत्रता या निजता के नाम पर वो जो चाहे वो करे। फिर तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, आपराधिक मामले हैं, इनके बारे में क्या होगा? अगर राज्य को इसके बारे में अधिकार नहीं दिया जाएगा तो फिर तो एक तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अब आप यहां देखेंगे कि राज्य और समाज का भी आपको एक द्वंद दिखाई देगा, राइट। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मित्रों ये दो पॉइंट मैंने निजता के अधिकार को लेकर के आपको बताए हैं। बेहतर होगा कि आप इस पर सोचें, कुछ पॉइंट तैयार करें और कुछ लिखने की भी कोशिश करें। ऐसे लेखन आपको निबंध की भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। तो मित्रों अब न्यूज के मामले में इतना ही, और जहां तक न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं ढेर सारी क्लिपिंग्स आज भी आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आप सब अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार देख लेंगे। और मित्रों अंतिम चरण पर आता हूं, ईमेल का चरण है ये, और सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, आयुष, रमाशंकर राय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, निवेदिता, गजेंद्र आर्य भालपुर छत्तीसगढ़ से, रणवीर तिवारी, रोहित सिंह गुजरात से, रजनी, आदित्य और अंकित सिंह, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब दो दिन के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और यह भावना भी कि ये जो दो दिन हैं आपके बहुत उपयोगी तरीके से व्यतीत हों। मित्रों मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।